तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशतानिने नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंह दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जत कीर्तनं जत स्मरणं जत क्षणं यद वंदनं यद श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्वसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रस्वसे नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः स्वपादपल्लवं वामः आत्मज्योतिरगाततः। तां स्मरण करने वालों के हृदय में विन्यस्य रखकर विद्धं चुभा हुआ दंडक कंटक ही दंडका रंग में लगे हुए कांटों द्वारा जब रामचंद्र जी वहां रह रहे थे स्वपाद पल्लवान अपने चरण कमलों की पंखुड़ियां रामः भगवान रामचंद्र आत्मज्योति ही ब्रह्म ज्योति नामक उनकी शारीरिक कांति की किरणें अगात आ गए। ततः ब्रह्म ज्योति के परे या अपने वैकुंठ लोक में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद और तत्पर्य अनुवाद। यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंडकारण्य में रहते हुए भगवान रामचंद्र के जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। तत्पर्य भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यातव्य हैं। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य के जंगल में घूमते थे तो कभी कभी उनके चरण कमलों में कांटे चुभ जाया करते थे। भक्तगण इसे सोचकर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को इस जगत के किसी कार्य या कारण से किसी प्रकार की पीड़ा या हर्ष का अनुभव नहीं होता, किंतु भक्तों को सह्य नहीं कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा चुभे। गोपियां कृष्ण के विषय में ऐसा ही सोचती थी। जब जंगल में घूमते हुए उनके पांव में कंकड़ तथा बालू के कण लगते थे भक्तों के हृदय में उठने वाली पीड़ा को कर्मी, ज्ञानी या योगी जन नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को यह सोचना भी सह्य नहीं था कि भगवान के चरण कमलों में कांटा भी गड़े, उन्हें भगवान के तिरोधान के बारे में सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करनी पड़ी, क्योंकि भगवान को इस जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस लौटना पड़ा। इस श्लोक में भगवान श्री राम की कृपा का वर्णन है। वे नंगे पांव घूमते थे वन में। दंडकारण्य बहुत प्रसिद्ध वन है, यहां से थोड़ी ही दूर पर नासिक, जिसे पंचवटी भी कहते हैं, तो वो जो एरिया है बहुत दूर में जंगल फैला हुआ, उसको दंडकारण्य कहा गया। भगवान श्री राम अपने भाई और पत्नी सीता जी के साथ वहां निवास किए और वन में अपने चरण कमलों से घूमते रहे, एक विरक्त उदासीन का जीवन बिता रहे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि भगवान के चरण में कांटे चुभते थे, तो सीता जी उन्हें बाहर करना चाहती थी, चरण कमल को धोती थी और धो करके जब वो कांटे को देख लेती थी तो सीता जी कहती थी, मैं कांटा बाहर कर देती हूं। भगवान कहते थे, प्रिय तुम्हारा काम तो है मेरे चरणों में लोगों को लाना, और मेरे चरणों में जो आ गए हैं उनको निकालना, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, मेरे चरणों से इनको बाहर मत करो। तो इतने दयालु हैं कि अपने चरण में लगे हुए कांटे को भी अलग नहीं करते थे, और आज जब भी कोई भक्त भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हैं तो कंटक विद्ध चरण का ही स्मरण करते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने चरण में आए हुए को बाहर नहीं करते हैं, कांटे को भी बाहर नहीं। सीता जी को कितनी पीड़ा होती थी भगवान के चरण कमल को कंटक विद्ध देख करके, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार नहीं करते थे कि हमारे चरण कमलों से बाहर करो कांटे को। तो आगे होने वाले भक्त आज जब भी भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, खासकर पाद पल्लवम, भगवान श्री राम के चरण कमल के पत्ते के समान अति सुकुमार हैं, ध्यान करने में जैसे भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश, कमल, जव आदि का ध्यान किया जाता है, तो अब भक्त लोग कांटे का भी ध्यान करते हैं। कुछ ज्यादा आवाज है ना, कुछ कम करो। तो भगवान के चरण कमल में जैसे अन्य चिन्ह हैं, वैसे कांटा चुभा हुआ भी एक चिन्ह है। बड़े दुख के साथ भक्त लोग भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि भगवान के चरण में कांटे चुभे, लेकिन भगवान की यह दयालुता का सूचक है। इस प्रकार से दयालु हैं। स्मर्तम हृदय विन्यस, स्मरण करने वालों के हृदय में स्थापित करके भगवान गए। इसका अर्थ यही है कि जब भक्त भगवान के चरण कमल का ध्यान करेंगे तो उनको कांटे का ध्यान होगा। भगवान कोई रह करके नहीं गए, लेकिन एक साहित्यिक भाषा है कि भक्तों के हृदय में अपने कंटक विद्ध चरण कमल को रख कर गए। अर्थात ध्यान में भक्त भगवान के चरणों का इस तरह से ध्यान करते हैं, कंटक से युक्त। यह है भगवान श्री राम की अद्भुत दयालुता, तो अपने चरण शरण में आए हुए किसी का तिरस्कार नहीं किए, किसी का तिरस्कार नहीं। जो कांटे तक को अपने पैर में स्वीकार कर सकता है, वह किसी भक्त को, कोई जीव को जो उनकी शरण में आए, क्यों नहीं स्वीकार करेगा। तो आज भगवान का जन्मदिन है, अतः उनके गुणों का स्मरण करना, कीर्तन करना और श्रवण करना ये बहुत पवित्र धर्म है। वैसे तो हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान हरि का स्मरण सब समय और सब जगह करना चाहिए, परंतु फिर भी भगवान भागवत में कहते हैं मम पर्वानुमोदनम, मेरे पर्व का अनुमोदन करना चाहिए। अनुमोदन का अर्थ है जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा, इन सब तिथियों का विशेष आदर करना चाहिए। भगवान का जन्मोत्सव मनाना, अभिषेक करना, गीत गाना, प्रसाद बनाना, श्रृंगार करना, नाचना गाना, इसको अनुमोदनम कहते हैं, मम पर्वानुमोदनम। उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने कहा है, यह भक्ति का अंग है, भक्ति के अनेक अंग है, जिसमें बहुत बलवान अंग है भगवान का इस तरह स्वागत करना। आज हम भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी के कुछ गुणों का स्मरण करेंगे। रामायण के सुंदर कांड से, और सुंदर कांड बहुत प्रसिद्ध है लोक में, जो और कोई कांड नहीं पढ़ते हैं तो ब्यूटीफुल कांड तो पढ़ेंगे ही सुंदर कांड, उसका नाम ही सुंदर कांड रखा गया, वास्तव में बहुत सुंदर है। और इसमें विशेष करके श्री हनुमान जी का जस ज्यादा गाया गया है। तो एक बार की बात थी, जब इस बात का पता लग गया कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया है लंका में, तब बानरों ने निश्चय किया कि लंका में किसी को जाना चाहिए। संपाति ने बताया, संपाति जटायु का भाई था, तो दोनों जब जवान थे, दोनों गिद्ध है, वो गिद्ध नहीं थे वास्तव में, वो देवता थे लेकिन गिद्ध के आकार में थे, तो जवानी में ऐसे जोश होता ही है। वे दोनों उड़े और कहे कि हम सूर्य लोक में जाएंगे, जैसे आजकल के वैज्ञानिक झूठा कहते हैं कि हम चंद्र लोक जाएंगे, कुछ लोग तो यहां तक कहते हम जाकर होकर के आए हैं, लेकिन उनका झूठापना क्लियर हो चुका है। सब जाकर के ये कहे है कि वहां हवा नहीं है, और जब ये दिखाते हैं कहीं किसी वीडियो में कुछ है, तो कहे हम झंडा गाड़ करके आए हैं, तो वो झंडा लहरा रहा है हवा से, तो इसका मतलब है कहीं इस पृथ्वी पर ही गाड़ करके रेगिस्तान उगिस्तान में उसका फोटो लेकर के कहते हम वहां से, वहां झंडा गाड़ करके आए। जब कहते हो कि हवा नहीं है तो झंडा फिर हवा से लहरा कैसे रहा है, कई कारण निकाला गया, किताब निकली है इसमें कहा गया ये लोग कभी नहीं गए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार तो कोई प्रश्न ही नहीं है जाने का, वो कहे हैं जो बात वो भी सत्य बात। लेकिन जटायु और संपाति दोनों सूर्य लोग जाना चाहते थे, उड़ने में बहुत सक्षम थे, तो बाद में बहुत ऊंची उड़ान भरे सूर्य के लगभग निकट पहुंच गए, तो जटायु को बहुत आंच लगने लगा, सूर्य के ताप का अनुभव होने लगा, तो कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं लौटता हूं, तो लौट आया। लेकिन संपाति बहुत जोश में था, कहा कि नहीं मैं पहुंच करके रहूंगा। ऊपर गया तो आग लग गई उसके पंख में, जल गया और गिरा धड़ाम से नीचे। तो वही गिद्ध समुद्र के तट पर था, और उसने बताया कि देखो रावण तो हर करके ले गया है, लेकिन तुम लोगों को इस बात का पता नहीं है कि सीता को कहां रखा है। तो मैं देखूं तुम नाही गिधि दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दृष्टि होती है, वो आकाश में उड़ता है उतना ऊंचा, लेकिन जमीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को देख लेता है, मरे हुए पशु को। तो कहा कि मेरी दृष्टि बहुत है और मैं देख रहा हूं सीता लंका में है, रावण इधर उधर कहीं नहीं छिपाया है, लंका में ले गया है। अगर तुम में से कोई वीर लंका जा सकता है तो सीता को देख करके आएगा और बताएगा भगवान को कि सीता इस हालत में है। लोग बहुत खुश हुए संपाति की बात सुन करके, बहुत प्रसन्न हुए। वापस में विचार करने लगे कौन जाएंगे कौन जाएंगे, तो सब लोगों की दृष्टि जामवान पर थी, वो जो भालू थे जामवान ऋक्षराज, तो वो बहुत बलवान व्यक्ति थे। भगवान कृष्ण के साथ वो 28 दिन युद्ध करेंगे, बाद की लीला है, और इनकी पुत्री का विवाह भगवान से होगा जामवती का। तो वो कहे कि भाई, सब लोगों ने कहा कि जामवान जी जाएंगे लंका में, सीता का पता लगा करके आएंगे। जामवान जी ने कहा कि देखो, मैं इस समय बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी शक्ति नहीं है। जब मैं जवान था तो भगवान वामन देव जब त्रिविक्रम बने थे, बहुत विशाल रूप बनाए थे भूमंडल नापने के लिए, तो मैं भगवान के विजय की उद्घोषणा करते हुए 7 राउंड परिक्रमा किया था दौड़ करके, मतलब पूरे ब्रह्मांड के। एक बार में जामवान जी दौड़े थे 7 बार और भगवान का जस गा रहे थे कि भगवान ने इस तरह से बलि से लिया धन, इतना बड़ा जस है, इतना त्रिविक्रम स्वरूप। तो उस समय मेरी जवानी थी, इसलिए मैं ऐसा कर दिया भगवान की कृपा से। अब मैं जा सकता हूं लेकिन मुझे लौटने में संदेह है, मैं नहीं जा सकता। तो अंगद की तरफ दृष्टि पड़ी सबकी, तो अंगद तुम जवान हो लड़का हो, तुम जाओ लंका। 100 योजन समुद्र पार करके जाना था सीता का पता लगाने के लिए, ऐसा नहीं था कोई हवाई जहाज था उस पर चले जाए। तो अंगद जी भी कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा लेकिन लौटने में मुझे संदेह है। तो हनुमान जी का एक स्वभाव था कि हनुमान जी को उनके बल की याद दिलानी पड़ती थी, नहीं तो अपने बल को भूले रहते थे। जामवान जी ने कहा कि हनुमान तुम जरा याद करो, तुम्हारा अपार बल है, तुम जा सकते हो और माता सीता का पता लगा करके आ सकते हैं। तुम्हारा बल ऐसे है, एक ऋषि ने तुमको साप दिया है कि तुम अपने बल को भूले रहोगे, लेकिन दूसरा कोई याद दिलाएगा तो तुम्हारा बल याद आ जाएगा। तो इतना कहते ही हनुमान जी सुनते ही भय पर्वताकार, हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हुआ और पर्वत के समान विशाल बानर हो गए, बहुत बड़ा। सुनते ही भय पर्वताकार, पर्वत के आकार के हो गए और जय श्री राम बोलने लगे। सभी बानरों को बहुत खुशी हुई कि हनुमान ये काम करेगा। और फिर वहां पर जितने इकट्ठे थे बानर, विशेषकर जामवान जी ऋक्षराज, उनको प्रणाम किए और भगवान श्री राम का स्मरण करके वे चले। तो पहले समस्त बानरों के सामने बड़े बड़े पर्वतों पर पैर देने लगे। जहगीर चरण देई हनुमंता चला सुगा पाताल तुरंत, इतना भारी थे हनुमान जी पर्वत जैसा कि किसी दूसरे पर्वत पर जब पैर रखते थे वो तो पर्वत दबकर पाताल में चला जाता था, इतना भुद्राकार शरीर था तो पाताल चला जाता था। अंत में एक पर्वत पर वे चढ़े और अपने वजन को हल्का करके और आकाश में उड़ चले। वैसे भी पवन पुत्र है ही, अपने को तुरंत हल्का कर लेना है आकाश में और उड़ना है, ये उनको योग सिद्धि प्राप्त थी सब तरह से भगवान की कृपा थी, ये उड़े। जब उड़े समुद्र के पर जा रहे थे, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ताही भांत चले हनुमाना, लगता था कि भगवान श्रीराम का बाण जा रहा है बहुत जोर से, बहुत जोर से। हनुमान जी इतनी गति से चले, उस गति से कोई वायुयान नहीं चल सकता है, जितना तेज जा रहे थे समुद्र के ऊपर। तो जा रहे थे तो जलनिधि समुद्र ने सोचा कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी तू मैनाक होश श्रमहारी। समुद्र ने अपने भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत को कहा कि मैनाक तुम आकाश में रह जाओ, तुम्हारे पंख हैं, वो कहीं भी उड़ सकता है, कहीं अस्थिर हो सकता है मैनाक। तो मैनाक को समुद्र ने कहा कि तुम आकाश में अस्थिर हो जाओ जिससे कि वो हनुमान जी थोड़ा आराम कर लें, हनुमान जी को आराम दो, बीच समुद्र में आकाश में कहीं बैठ जाएंगे पर्वत पर। तो वो मैनाक आया और उसने हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहा कि आप बहुत उड़ान भरने से थक गए हैं, आप हम पर बैठ लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, इसके बाद जाइए। तो हनुमान ते ही परसा कर पुलकिन प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी उसको हाथ से आदर दिया, स्पर्श किए और प्रणाम किए उसको और कहे कि ठीक है धन्यवाद तुम हमें विश्राम देने के लिए आए, लेकिन राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं सीता जी का पता नहीं लगा लेता हूँ, भगवान राम का काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। वो उड़ते ही रहे, वो जाते ही रहे, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मतलब राम का काम करना ही मेरे लिए विश्राम है, मैं इस तरह आराम करने के लिए नहीं चला हूं। तो चलेगा, तो उड़ते हुए जा रहे थे तब तक देवताओं ने एक सुरसा नामक स्त्री को जो सर्पों की माता है उसको नियुक्त किया कि माँ तुम जरा हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लो, तो कितना बल है, कितना दिमाग है, बुद्धि है, जरा परीक्षा लो। तो सुरसा आई, यह सुरसा कश्यप जी की पत्नी है, जैसे कद्रु विनता आदि पत्नियां हैं दीति अदिति, उसी तरह से एक सुरसा पत्नी है जो सर्पों की माँ है, कद्रु नागों की माँ है। नाग और सर्प में थोड़ा सा अंतर, नाग और उत्कृष्ट कोटि के सर्प होते हैं। तो सुरसा नाम अहिनकर माता, ये सर्पों की माँ थी। वो आई तो उसने सीधा हनुमान जी से कहा कौन हो तुम, मैं तुमको खाऊंगी। तो हनुमान जी अपना शरीर तो बड़ा किए नहीं, सूक्ष्म छोटा बन करके उड़ रहे थे, वास्तव में पर्वत जैसा बनकर नहीं उड़ रहे थे, अपने स्वरूप में हो करके छोटे रूप में उड़ रहे थे। तो सुरसा ने कहा कि मैं तुमको खाऊंगी। तो जोजन भर तही बदन पसारा, एक जोजन तो आठ माइल, चार क्वेश्चन, आठ माइल में वो अपने मुख को खोली कि मैं तुमको निगल जाऊंगी, खाऊंगी। तो कपितन किन दुगुन विस्तारा, तो हनुमान जी 16 माइल के हो गए, तो उतने छोटे से मुंह में कैसे हट सकते थे। वो खाने के लिए मुंह बाई मुंह फाड़ी तो हनुमान जी ठीक दुगना हो गए। तो अंत में 16 जोजन मुख तही ठहरो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। बाद में 16 जोजन मतलब 16 चौके 64 कोस, इसके दुगना माइल, इतना मुख फैलाया तो हनुमान जी 32 जोजन के हो गए, ठीक दुगुना। इसके बाद 100 जोजन की हो गई, हो गया उसका मुख 100 जोजन, 800 माइल का मुख विकराल खोल दी। तो हनुमान जी तुरंत छोटा सा रूप बनाकर उसके मुंह में समा करके पार हो गए। ऐसे मुख में समाए और नाक से चाहे नाक से कान से निकल गए छोटा बन करके। तब वो बहुत प्रसन्न हुई कि तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा ले लिया और तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम राम का कार्य करोगे, ठीक है जाओ। तो हनुमान जी माता सुरसा को प्रणाम किए और चले। बीच रास्ते में हनुमान जी को इतना संकट हो रहा था, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से सब पार करते जा रहे थे। कुछ दूर गए, लगभग लंका के निकट मध्य में ही समुद्र में गए थे, तो एक राक्षसी जो बहुत माया जानती थी वो समुद्र के नीचे रहती थी और उसमें एक शक्ति थी कि किसी भी जीव की परछाई समुद्र में पड़ती थी पानी के ऊपर तो उसके पास ऐसी कला थी कि छाया को ही पकड़ लेती थी, छाया ग्राहिणी थी इस तरह से। तो अब वो जीव उड़ने नहीं पाता था, वो गिर जाता था और यही विधि सदा गगनचर खाई। जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जो आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई केवल पड़ जाए बस पकड़ लेते थे। ऐसा कोई उपाय आज नहीं बना है कि हवाई जहाज जा रहा है और परछाई पड़े और कोई पकड़ ले, ऐसा नहीं है ना। प्रतिछाया से नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वो राक्षसी इतनी माया जानती थी तो जीव जंतु जो गगन उड़ा ही तो यही विधि सदा गगनचर खाए। इस तरह से वो जल में भोजन तो करती ही थी लेकिन आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी जीव जंतु देवता को भी पकड़ लेती थी और गिर जाता था पानी में और खाती थी। यही उसके आजीविका थी। इसे पकड़ पकड़ कर खाती थी। सोइछल हनुमान सन किन्हा तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। वही छल हनुमान जी के साथ की, हनुमान जी का प्रतिबिंब प्रतिछाया जब उस पर पड़ी, प्रतिछा परछाई पड़ी तब तक हनुमान जी की गति बाधित होने लगी। बहुत वेग से उड़ रहे थे, गति एकदम रुक गई और रुकने के बाद वो हनुमान जी लगे नीचे आने, जैसा लगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच रहा है, तो कोई महाचुंबक खींच रहा है। हनुमान जी की गति शिथिल हो गई और लगा कि वे अब गिर जाएंगे उसके मुख में पानी में और खा जाएंगे। लेकिन हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ये किसी व्यक्ति की माया है, शक्ति है जो मुझे खींच रही है। ताहि मारी मारुत सुत बीरा जलधि पार गयउ रण धीरा। हनुमान जी उसकी माया को पहचान गए और एक गदा मारे पानी के भीतर वो खत्म हो गए। अब कोई खतरा नहीं रहेगा गगनचर जीवों को, हनुमान जी ने मार दिया। इस घटना पर एक हिंदी के महाकवि हो गए हैं बिहारी लाल, जो मथुरा के थे, तो वे लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण कविता है। या भव पारावार को उलंघ ही पार को जाए, ती छवि छाया ग्राहिणी ग्रसे बीच ही आए। कौन है जो इस भव समुद्र को पार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी उपाय से कोई आकाश में जा भी रहा है लेकिन छवि छाया ग्राहिणी ग्रसे बीच ही आए, बेचारा भव समुद्र पार करना चाहता है, उड़ रहा है, बहुत नियम पालन कर रहा है, भक्ति का सब कर रहा है, लेकिन स्त्री की जो शोभा है वो छाया ग्राहिणी है, वो बीच में ही ग्रस लेती है, वो गिर जाता है। और वास्तव में देखिए यह कितना सत्य बात है, स्त्री किसी का हाथ नहीं पकड़ती है गिराने के लिए, लेकिन केवल उसकी छवि उसकी शोभा किसी के आंख में आ जाए बस गिरा वो। तो इस घटना पर बिहारी कवि ने लिखा है बहुत सुंदर भाव, या भव पारावार को, पारावार मतलब समुद्र को, या भव माने जन्म मरण संसार, इस संसार समुद्र को कौन पार कर सकता है। अरे कोई हनुमान जी जैसा समर्थ होगा तब पार करेगा, नहीं तो बहुत कठिन है पार करना। ती छवि छाया ग्राहिणी ग्रसे बीच ही आए। ती छवि, ती मैंने स्त्री, स्त्री की जो शोभा है वो छाया ग्राहिणी है, दूर से ही रिमोट कंट्रोल से पकड़ लेती है। ये था उस छाया ग्राहिणी राक्षसी के पास शक्ति। तो हनुमान जी तो उसको मार दिए और इसके बाद जलधि पार गए रणधीर, समुद्र के पार पहुंचे। समुद्र के पार जब गए तो श्री हनुमान जी के साथ एक और मुठभेड़ हुई। एक लंकिनी थी, उसका नाम था लंकिनी। लंकिनी इसलिए नाम दिया गया था कि वो लंका की रक्षा करने वाली राक्षसी थी। तो हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप बना करके लंका में प्रवेश कर रहे थे। मशक समान रूप कपिधारी लंकन चले सुमिर नरहरी। श्री हनुमान जी नरसिंह वंदना किए, नमस्ते नरसिंह आया, और छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश करने की सोचे। मशक समान, मच्छर जैसा छोटा कि कोई देखे ना, लेकिन वो लंकनी देख ली लंकनी देख ली और कही, अरे दुष्ट तुम कौन हो? वास्तव में रात के समय प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश करने से पहले की ही बात है, जानस नहीं स्वभाव सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानते हो मैं क्या खाती हूँ? लंका में आने वाले चोरों को मैं खाती हूँ, यही मेरा आहार है। चलो आज भगवान ने आहार दिया, तुमको मैं खाऊंगी। वास्तव में खाने के लिए तैयार हो गई, हनुमान जी को खाने के लिए चली, बिल्कुल मुख दा करके खोल करके और हवा द्वारा वो खाने ही चली। तब तक तो हनुमान जी समझ गए, और मुठिका एक महाकपि हानि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हनुमान जी उसके पीठ पर एक मुक्का मारे जोर से, स्त्री थी इसीलिए कोई मुंह पर नहीं मारे, आगे नहीं मारे, पीठ पर मारे, जोर से मारे, और वो तो मुख से खून उगलती हुई गिर पड़ी। गिर गई तो उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करने लगी। उसने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था रावण को तो कहा था कि हमको कहा था कि जिस दिन लंकिनी को कोई बानर मारेगा और ये बेहोश हो जाएगी तो समझ जाना कि लंका का नाश अब चालू हो जाएगा। उसने कहा हनुमान जी से, और कहा कि बहुत अच्छा है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम के दूता। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं आज आंख से भगवान राम के दूत को देख रही हूँ। यही प्रीचिंग था, एक मौका से कृष्ण भावना भावित हो गई, तुरंत भक्ति की बात करने लगी। तो इतने शुद्ध भक्त का जो मौका लगा उसके पीठ पर तो सारा पाप खत्म हो गया। और कहने लगे, मेरा धन्य भाग्य है कि मैं अपने आंख से साक्षात भगवान राम के दूत को देख रही हूँ। तुम जाओ लंका में, तुम काम करोगे, वास्तविक दूत हो। तो उसने भी कहा, प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा। अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को अपने हृदय में रह करके तुम नगर में प्रवेश करो, मैं जान गई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम काम करोगे। लंकिनी ने कहा, जो लंका के सिक्योरिटी विभाग की हेड थी देखने वाली, उसने कहा कि ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम काम करोगे, पर हमेशा भगवान राम का स्मरण रखना, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा। ये बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रिय चौपाई है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो ऐसे देते, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशल नरेश श्री राम को हृदय में रह कर स्मरण करते हुए जाओ और काम करो, तुम काम कर सकोगे। लेकिन हनुमान जी बहुत खतरनाक जगह में जा रहे थे और किसी से वहां परिचय नहीं था, किसी से भी नहीं। बाद में विभीषण जी से परिचय हुआ, लेकिन पहले से कोई पता नहीं था, न तो हनुमान जी रावण का फोन नंबर जानते थे, न कुछ भी कुछ भी पता नहीं था कि पहले कह सके कि हम आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। सारे खल थे, गाय खाते थे, ब्राह्मणों की हत्या करते थे, मदिरा पीते थे, व्यभिचार में रहते थे, एक नंबर के खल और दूषित लोग लंका में रहते थे। स्वयं विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा है बाद में कि लंका नहीं, हनुमान जी सोचे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वास। लंका तो निशाचरों की नगरी है, पापियों की, राक्षसों के, यहाँ कोई सज्जन कैसे रह सकता है? अगर कोई होगा भी तो कैसे रहेगा, वो भाग जाएगा यहाँ से। विभीषण जी ने राम नाम स्मरण किया था उस पर वो कहते थे। तो बहुत दुर्गम और बहुत दूषित, बहुत खतरनाक डेंजरस जगह में हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बल है हनुमान जी का, वो है भगवान श्री राम का स्मरण। प्रभु श्री नगर की जय, सबका जय, हृदय राख कौशलपुर राज। और लिखा भी गया है कि लंका ही चले सुमिर नरहरि, नरहरि का स्मरण करके चले। नरहरि मतलब नरसिंह देव, अथवा भगवान श्री राम जो मनुष्यों में हरि हैं, सिंह हैं, उनको भी नरहरि कहते हैं, या आधा नर और आधा हरि सिंह है, नरसिंह भगवान। इसे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही किसी बिहड़ स्थान में यात्रा के समय या संकट की संभावना होने पर भगवान नरसिंह देव का स्मरण किया जाता है। ये श्रीमद् भागवत के नारायण कवच में भी ये बात दी गई है, हमें घोर विपत्तियों से, दुर्ग से, कठिन स्थान से और शत्रुओं से भगवान नरहरि हमारी रक्षा करें, ये प्रार्थना की गई है। तो ऐसे खतरनाक जगह में हनुमान जी जा रहे हैं तो भगवान नरसिंह देव का स्मरण कर रहे हैं, उनकी कृपा से भक्त सफल होता है। तो गए, इसके बाद एक पर्वत के ऊपर चढ़े, लंका के, लंका द्वीप में चढ़े बहुत ऊंचा, और वहां से भी लंका को देखने लगे, बहुत ऊंचे स्थान से लंका को देखे। कनक कोट कर परम प्रकाश, जो चहरदीवारी थी लंका की वो सोने की थी, और ऐसा चहरदीवारी जिसे रोज धोया जाता था, पोछा जाता था, तो चमचम चमक रही थी, बाउंड्री चमक रही थी सोने की, और घर जितने थे सब सोने के थे, गोल्ड थे। हनुमान जी देखने लगे, इसके बाद वे चले, लंका में प्रवेश किए। सबसे पहले हनुमान जी ने कोशिश किया कि रावण के महल में जाए, बहुत छोटा रूप बना लिए थे, और इच्छा के अनुसार कोई भी रूप बना सकते हैं। रावण के भवन में जब पहुंचे, यह देखने के लिए कि सीता जी हैं कहाँ, हनुमान जी ये सोचने लगे कि जब रावण ले गया है सीता जी को तो अपने बेड पर रखा होगा, अपने पलंग पर रखा होगा वो दुष्ट, वो कहीं ना कहीं अपने अंतःपुर में, अपने भवन में रखा होगा। और रात्रि के समय हनुमान जी प्रवेश किए थे, तो गए देखे। रावण की अनेक रानियां थी, और उसमें ऐसी सामर्थ्य थी कि एक रानी के साथ एक रूप बना करके रहता था, इस प्रकार की माया शक्ति रावण में थी। तो हनुमान जी देखने लगे रावण को, सोया हुआ यहाँ सोया है, उसके साथ उसकी पत्नी सोई है, ये सोया। कभी कभी लोग बहुत शंका करते हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो ये सब क्यों देख रहे हैं। अरे समझना चाहिए, थोड़ा सेंस होना चाहिए कि हनुमान जी गए हैं सीता जी का पता लगाने, या नहीं कि वो जा करके और टीवी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी पूर्ण जितेंद्रिय हैं, वो केवल सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं कि हैं कहाँ। पूरा अंतःपुर में घूमे, सूक्ष्म रूप बना करके, कहीं भी सीता जी का पता नहीं लगा। एक बार मंदोदरी को देखे रावण के साथ सोया हुआ, तो उनको भ्रम हुआ कि ये सीता है, क्योंकि मंदोदरी भी बहुत सुंदरी स्त्री थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि हनुमान जी को शंका हुई कि क्या ये सीता जी है। बाद में हनुमान जी ने ध्यान से देखा, नहीं ये सीता जी नहीं। तो सबसे पहले रावण के अंतःपुर में उन्होंने छानबीन किया, वहां नहीं थी, और जगह घूम रहे थे, तो कहीं महिष मानुष धैन वजखर खल निशाचर भक्त ही। लंका के होटल में गए तो वहां पर कहीं गधा कोई खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई गाय खा रहा है, कच्चे पका करके खाने की कोई जरूरत उनको नहीं, ऐसे खा रहे, भोजन तो ऐसा था। और देखे सब कुश्ती कर रहे हैं, पहलवानी युद्ध का ट्रेनिंग ले रहे हैं, रात को भी जग निशाचर है ही, जो रात में काम करे घूमे फिरे उसको निशाचर कहते हैं। निशा में निशायाम चरती इति निशाचर, जो रात में घूमे उसको निशाचर कहते। रात में भगवान का भजन करना चाहिए अपने रूम में रह करके ठीक से, या भगवान का कीर्तन करे वो दूसरी बात है, लेकिन रात भर घूमे फिरे इंद्रिय तृप्ति के लिए, इधर खाए खान पान, यही निशाचर है वास्तव में। खाने के लिए शराब पीने के लिए घूमते हैं, कहीं होटल में कहीं 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 जाते हैं। हनुमान जी ने देखा कि लंका में सब रात भर ऐसे ही चल रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। कहीं भी उन्होंने ये नहीं देखा कि 10-5 आदमी कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन का तो प्रश्न ही नहीं था वहां, कहीं नहीं देखा। हनुमान जी का मन बिल्कुल खिन्न हो गया, वहां का दूषित दृश्य देख करके हनुमान जी बिल्कुल दुखित हो गए, जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका को देख करके दुखित हो गए थे। वे कहते किला भी अनिला है था करे बेगति, हे कृष्ण हमको क्यों यहाँ लाए, क्यों लाए, जिस काम के लिए आए अब आप ही कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी चकित हो गए वहां के पतन की दशा को देख कर, लेकिन भगवान पर और भागवत पर प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि यदि भागवत की कथा ये सुनेंगे तो ये जरूर बदल जाएंगे, विश्वास था। और भगवान कृष्ण की कृपा से श्रील प्रभुपाद सफल रहे। तो हमें स्मरण आ गया, जैसे प्रभुपाद जी विषाद में डूब गए थे, वैसे हनुमान जी लंका में जाकर बिल्कुल विषाद में पड़ गए। तो सीता का पता नहीं लगा, और दूसरी बात थी कि वहां का दृश्य इतना गंदा इतना खराब था कि उनका मन खिन्न हो गया। वास्तविकता यह थी कि सीता जी को एक बगीचा में रखा गया था, महल में नहीं रखा था रावण। उसे भय था कि महल में रखूंगा तो ये मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। तो वो एक बगीचा जिसे अशोक वाटिका कहते हैं, अशोक के बहुत से वृक्ष थे और अन्य भी बहुत से फलवान वृक्ष थे वहां, बहुत सुंदर सुंदर फल वाले, उसमें रखा था। और इसलिए भी रखा था कि अशोक के नवीन पत्तों को देख करके, फूल को देखकर, कोयल की कुक सुन करके सीता के हृदय में काम वासना जगेगी तो हो सकता है कि यह मुझे स्वीकार कर ले, इसलिए भी रखा था। अशोक वाटिका में रखा था जो नगर से थोड़ा बाहर था। तो हनुमान जी ऐसे ढूंढ रहे थे, कहीं भी कोई पता नहीं मिला, बहुत विषाद में थे। तब तक देखा उन्होंने एक घर था, वो विचित्र घर था। विचित्र घर इस माने में था कि मंदिर का आकार बनाया गया था उसके शिखर पर, और रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंद बहुत देख हरस कपिराय। वो देखे कि इस लंका में एक ऐसा घर है जिस पर धनुष बाण और सुदर्शन चक्र का चिन्ह बनाया हुआ, अद्भुत गृह, भगवान का नाम लिखा हुआ है और तुलसी के नए नए वृक्ष लगाए हुए थे पौधे वहां पर घर के पास, नव तुलसी का वृंद बहु, बहुत तुलसी देख ही हरस कपिराय। हनुमान जी को यह देख करके बहुत खुशी हुई कि यहाँ कोई ना कोई वैष्णव रह रहा है, बहुत आश्वासन मिला। ये वैष्णव की पहचान है, उसके घर के पास तुलसी जी रहती है, भवन पर भगवान का नाम लिखा रहता है या चक्र का चिन्ह रहता है, शिखर रहता है। इस तरह से अगर शिखर ना भी रहे तो आज तुलसी देख करके हम लोग जान लेते हैं अच्छा ये भगवान के भक्त का घर है, तुलसी देख कर समझ में आ जाता। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्न तो हुए पर शंका में भी पड़ गए। वो सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवास। हनुमान जी छनक रहे थे कि जैसे मारीच कपट मृग बन गया था, ऐसे कोई राक्षस साधु और वैष्णव के वेश में न हो गया हो। हनुमान जी शंका में थे, वास्तव में विभीषण जी सच्चे संत थे, पूर्ण भक्त थे, लेकिन हनुमान जी तो छनक रहे थे स्थान के कारण कि लंका तो निशाचरों की बस्ती है, तो यहां पर कोई वैष्णव कैसे रह सकता है, उसका गुजारा नहीं हो सकता है। पूर्ण शंका में थे, विश्वास नहीं किए, कुछ भी नाम लिखा हुआ था, तुलसी जी थी, सब था, लेकिन मन शंका में डूबा था। ताही समय विभीषण जागा, मनमोह तरक करे कपिलागा। जब हनुमान जी मन में इस तरह से कंफ्यूजन में थे तब तक विभीषण जी जगे और जगते ही वो श्री राम श्री राम सीता राम बोले। तो हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, राम नाम तो सुमिरन किन्ह, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। श्री हनुमान जी अब प्रसन्न हो गए कि ये निश्चित वैष्णव है। अरे कोई कपटी होता तो शाम को भले कुछ करे, भोर में मंगल आरती में आने वाला तो सही वैष्णव है। ये हनुमान जी ने सोचा, क्योंकि भोर में कोई दिखाने के लिए नहीं उठता है ना, स्वाभाविक भगवान का नाम आता है, नाम आता। शाम के प्रोग्राम में विश्वास नहीं किया जा सकता पूरा पूरा लेकिन भोर के प्रोग्राम में तो पता लगता है कि ये तो शुद्ध मन से ही आया है मंदिर कीर्तन कर। तो भोर में उठे और कीर्तन करने लगे हनुमान जी विभीषण जी। तो हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, तो कपि श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि ये सज्जन है, संत है, वैष्णव है। तो फिर हनुमान जी सोचने लगे यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु तो हो ही न कारज हानि, अब इससे मैं हठ पूर्वक परिचय करूंगा और इसकी सहायता से मैं सीता का पता लगाऊंगा। एक व्यक्ति मिला पूरे देश में, पूरे लंका में, जिसको देख, जिसके बारे में हनुमान जी सोचने लगे कि इससे फ्रेंडशिप करूंगा। इस तरह से वास्तव में वैष्णवों से मित्रता करनी चाहिए। जितना आदमी अपने परिवार के लोगों से प्रेम करता है उतना ही प्रेम भक्तों से करना चाहिए, जिनके साथ भले कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन आत्मा का संबंध। हनुमान जी सोचने लगे कि यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु तो हो इन कार्य हानि, किसी वैष्णव से कार्य की हानि नहीं हो सकती है। हनुमान जी ने सोचा कि हो सकता है अगर मदद न करे तो कम से कम हानि तो नहीं करेगा, जो जप कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वे निकट आए, विभीषण के निकट आए। ब्राह्मण के रूप में थे हनुमान जी उस समय, विभीषण के पास आए तो टेस्ट करने के लिए भी वो सोचते थे क्या व्यवहार करेगा क्या करेगा। तो विभीषण जी ब्राह्मण देखते ही, और हनुमान जी तिलक किए थे, ऊर्ध्वपुंड तिलक था, तिलक देकर विभीषण जी तुरंत प्रणाम किए और श्री हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा हनुमान जी ने कि आपका परिचय बहुत अच्छा लगा कि आप प्रातः काल भोर में भगवान का नाम ले रहे हैं। पहले अपना प्रयोजन नहीं बताना चाहिए किसी को, चाहे मित्र हो चाहे कोई हो, व्यक्ति जिस काम के लिए गया है उसको तुरंत नहीं खोलना चाहिए, पहले परिचय बढ़ाना चाहिए। तो हनुमान जी पहले पूछे कि आप कौन हैं, क्या हैं, ये हैं। बहुत अच्छा लगा, आपके घर पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, चक्र का चिन्ह है, धनुष बाण का चिन्ह है, तुलसी लगी हुई है, बहुत अच्छा लगा। तो विभीषण जी ने कहा, अपना परिचय दिया कि मैं रावण का भाई हूं, लेकिन हनुमान जी विप्र कहते हैं, विप्र हे ब्राह्मण, बाद में जान गए थे हनुमान जी तो उसके बाद कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दर्शनन जीव बेचारी। हनुमान जी मैं वैसे लंका में रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, अगर अपने रेंज से थोड़ा भी इधर उधर होती है तो कट से कट जाती है ना। ये सबका अनुभव होगा कि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कैसे कट जाती है, तो बहुत बच करके दांतों से रहना पड़ता है। और 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे, इनके बीच में जैसे जिहवा बेचारी गुजारा करती है ऐसे मैं यहाँ रह रहा। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दशमन बीच जीभ बिचारी, क्या कहूं। तो लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत। मैं जान गया कि भगवान श्री राम की कृपा से ही आप मिले हुए हैं। और आपके विषय में मैं ऐसे जानता हूं कि हमें ऐसे विश्वास हो रहा है कि भगवान के पार्षदों में से आप कोई हैं। हरिदासन मह कोई मोरे मन प्रतीत ऐसे हो, मेरे मन में ऐसा विश्वास हो रहा है कि आप साक्षात भगवान के परिकर हैं। कभी कभी तो ऐसा हो भ्रम हो रहा है कहीं भगवान राम ही तो ये ब्राह्मण बनकर नहीं आए हैं, आयो बुझ करण बड़ भागे। हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि आप स्वयं भगवान राम ही तो नहीं आए हैं हमको धन्य करने के लिए। और क्या कभी ऐसा समय आएगा कि भगवान हमको अपनाएंगे, हमको हम पर कृपा करेंगे? और आप ये बताइए कि क्या कभी किसी गोष्ठी में भगवान श्री राम मेरा स्मरण करते हैं कि कृपा करेंगे? मैं तो वास्तव में उनका दास हूँ, उन्हीं का भजन करता हूँ, इस लंका में किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ, दिन बिता रहा। हनुमान जी इतना सुन करके तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी का ये स्वभाव तो अपने विषय में बहुत नहीं बोलते थे, अपना केवल नाम भर बताए और कथा राम की कहे। इस दोहा में प्रकट है तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम बताए कि मेरा नाम हनुमान है और कुछ नहीं बताए, और राम की कथा खूब कहने लगे, भगवान श्री राम के बखान करने लगे, ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। यही वास्तव में वैष्णव की पहचान है। वैष्णव लोग अपने विषय में नहीं बोलते हैं कभी, ये स्वभाव होता है, वो भगवान की बात बोलते हैं। तो हनुमान जी भगवान राम की बात कहने लगे, गुण वर्णन करने लगे, तो दोनों के आंखों में आंसू भर आया। हनुमान जी वर्णन कर रहे थे तो वो भी रोने लगे, रोमांच हो गया, और विभीषण जी रोने लगे, उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए भगवान की गुण गाथा सुन करके। और हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी असमय अधम सखा सुनो। उपाल कहते हैं कि मैं इतना अधम व्यक्ति हूं, जब हम पर भगवान कृपा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? हम एक बानर है ना, प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताहि न मिले आहारा। अगर सवेरे सवेरे कोई बानर शब्द बोल दे तो दिन भर भोजन नहीं मिलता है उसको। हम वैसी जाति के हैं, यदि हमारा नाम कोई सवेरे ले तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। ये केवल ऐसे गलत शब्द का उच्चारण किया, पता नहीं ये सत्य है नहीं है। यदि सवेरे कोई बानर कह दे तो दिन भर किसी न किसी कारण से उसका भोजन प्रतिहत होगा, नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम इतने नालायक हैं, इतने अधम हैं, इतने पापी हैं कि हमारे नाम कोई प्रातः कर ले तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जब हमारे जैसे अधम पर, एक बानर पर भगवान राम इतनी कृपा किए हैं तब तो और लोगों पर क्यों नहीं करेंगे? भगवान के इस दयालुता गुण का स्मरण करके हनुमान जी के आंखों में अजस आंसू भर आए, किन्ह कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, आंखों में आंसू भर आया। वास्तव में भगवान का ऐसे स्मरण करना चाहिए, भगवान की कृपा, भगवान का सौंदर्य आदि याद करके रोमांच हो, कब भेंट होगी, कब डायरेक्ट सेवा करूंगा, कितने भगवान दयालु हैं। भक्त का तो यही जीवन है, भगवान के विशेषताओं गुणों का स्मरण करता रहता। तो हनुमान जी इस तरह से कहने लगे, जब हम पर कृपा किए तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे, हमारे जैसे अधम पर कृपा किए। ये साधुओं का, वैष्णवों का स्वभाव होता है, वे अपने को बहुत हीन समझते हैं। कई जगह हम लोग शास्त्रों में देखते हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि पूरी सर कीट है तो मुंह से लघिष्ट, जगाई मधाई है तो मुंह से पापिष्ट। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मल के कीड़े से भी अधम हूं, और जगाई और मधाई से भी ज्यादा पाप किया हूं, पापी। मोर नाम सुने जई तार पुण्य छय, मोर नाम लय जई तारे पाप है। अगर मेरा कोई नाम ले जाए एक बार भी तो जितना पुण्य का स्टॉक संचित है उसका सारा नलिपाई हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा। और अगर मेरे नाम को जिह्वा से बोल दे तो बहुत नया नया पाप हो जाएगा। नाम मेरा लेना ही पाप है। और नाम क्या था? कृष्णदास। सुनिए, कृष्णदास बोलने से पुण्य क्षय होगा और पाप लग जाएगा। लेकिन ये उनका मूड था, स्वाभाविक, कोई बनावटी नहीं। वैसा अनुभव करते थे कि मैं वास्तव में अति अधम हूं और अति पापी, ये अनुभव कर रहे थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि कभी न हो नहीं चतुर कहाव मति अनुरूप राम गुण गाव। मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई बुद्धिमान नहीं हूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का गुण गा रहा हूं। और अगर इस पर भी कोई शंका करता है, एते ऊपर कर यही जे अशंका, अगर कोई ये सोचे कि तुलसी नाम कमाने के लिए कविता लिख दिया, अपना नाम बढ़ाने के लिए, पूजा कराने के लिए, तब तो मोहते अधिक अस जड़ मतिरंका, तब तो मुझसे भी वो गया बीता है, मुझसे भी मूर्ख है वो ज्यादा, अगर ऐसा कोई शंका करता है। जसकस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे तस कई हूं ही हरि के प्रेरे। और उसके पहले उन्होंने कहा कि नाना पुराण में विवाग में सम्मतम, जैसा भगवान ने मुझे बुद्धि दिया है, जैसा विवेक दिया है और जैसा वे हृदय में प्रेरित कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, वे जैसा बुलवा रहे हैं मैं उसके अनुसार लिख रहा हूं और मैं अपने प्रभु का गुण गा रहा हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन इस पर भी कोई शंका करके तुलसी इसके लिए किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया, तो हमसे भी वो मूर्ख ज्यादा है, मुहूर्ते अधिक तो जड़ मतिरंक। एक बार वो लिखते हैं कि जे जन में कलिकाल कराला कर्तव्य वायस वेश मराला चल ही कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कलयुग में जन्म लिए हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस वेश मराला, जिनका कर्तव्य काम क्या है, बायस का, कौआ का और भेष हंस का है, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, वेद मार्ग को छोड़ करके कुपंथ पर चल रहे हैं, कपट के कलेवर हैं, साक्षात मूर्ति हैं, कलिमल भाड़ और कलयुग के जितने दोष हैं सबके बर्तन हैं, तो तीनमह प्रथम रेख जग मोरी, ऐसे लोगों में पहला स्थान मेरा है। वो ग्रंथकार कह रहा है जितने दोषपूर्ण लोग हैं, जितने पापी हैं, सबसे पहला नंबर मेरा है। ऐसा नहीं है कि वो केवल कविता कर रहे हैं, उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि वास्तव में मैं ऐसा हूं, जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो अपने को इस तरह से श्री हनुमान जी नीच कह रहे हैं कि हमारा कोई सवेरे नाम ले तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, मैं ऐसा अधम हूं, फिर भी भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। और वास्तविक बात है, नहीं तो इस बानर को कौन पूछता, यदि भगवान कृपा नहीं किए होते तो ऐसे ऐसे बानर बहुत घूमते रहते है ना। भगवान शंकर कहे हैं कि उमा न कछु कपि कहे प्रभुताई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। पार्वती, इस बानर में कुछ नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है, तो त्रिंते कुलिस कुलिस त्रिन करई तास दूत पन कहो कि विटरई। भगवान चाहे तो तृण को वज्र बना सकते हैं और वज्र को तृण बना सकते हैं। तो एक बानर को अगर जगत पूज्य बना दिए, इतना बलवान बना दिए, तो भगवान राम की विशेषता है। हनुमान जी विष्णु से, राम से जुड़े हैं, इसलिए इतना इनका प्रताप है। और कोई भी व्यक्ति जब भगवान से जुड़ता है तब उसका तेज बढ़ जाता है। भगवान की शक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का की जो भी विशेषता है उसमें उतरती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद में इतनी शक्ति कैसे आ गई जो पूरे विश्व को अभिभूत कर दिए, अपने वचनों से चेंज कर दिए, वास्तव में कृष्ण की शक्ति से किए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और भगवान भी कहते हैं कि जब जब विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में हुआ तत्तदेव अवगछत मन तेजोंस संभवम। जो भी संसार में तेजस्वी लोग देखे जाते हैं या विभूति मत ज्ञानवान वो मेरे अंश के अंश से समझो उनको, अर्थात इंपावर्ड है कृष्ण द्वारा, कृष्ण ने कृपा किया। नहीं तो 70 वर्ष की उम्र में कोई सन्यासी और जाकर के मलेच्छों के देश में और इस तरह से हृदय बदल दे, खान पान सब कुछ कैसे संभव हो सकता है। वैसे भगवान कभी भी किसी में शक्ति दे करके ये सब कार्य करा लेते हैं। जैसे कहा गया है कि जब भगवान ब्रह्मा जी नहीं बनते हैं तो किसी योग्य जीव में ही शक्ति दे देते हैं सृष्टि करने के लिए। तो इस तरह से श्री हनुमान जी में वास्तव में भगवान की कृपा है, वे रियलाइज कर रहे हैं। और जो भी हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि कुछ ज्ञान है, कुछ बल है, धन है, तो कृष्ण की कृपा है। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी बुद्धि है, हमारी कमाई है, हमारा ये है ये है, कुछ नहीं है, वास्तव में सब कुछ भगवान का है। तो हनुमान जी इस तरह से उनसे कहे और बाद में उन्होंने कहा कि मित्र, वो विभीषण जी को मित्र कहने लगे, सखा कह रहे हैं, अस्मय अधम सखा सुनु मुहु पर रघुवीर किन्ही कृपा सुनीर गुण भरे बिलोचन नीर। तुरंत भेंट हुई और मित्र भाव हुआ। हनुमान जी इतने महान हैं कि विभीषण जी वास्तव में उनके शिष्य है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, विभीषण जी शिष्य हैं हनुमान जी के। हनुमान जी की बात को उन्होंने स्वीकार किया, उनकी राय को माना, तो एक दिन वो लंका के राजा बने। पर हनुमान जी उनको अपना सखा कह रहे कि हे मित्र, मुझ पर भी कृपा किए भगवान, तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे। तो ऐसे बात होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं माता सीता का पता लगाने आया हूं, हमें पता लगा है कि रावण अपहरण करके सीता जी को लंका में लाया है, तो कहाँ है सीता जी, किस हालत में है, जीवित है कि नहीं है, और क्या खाती हैं, किस तरह से रहती हैं, मित्र बताओ जरा हमको, जल्दी बताओ कहाँ है कैसे है। तब हम विभीषण जी ने बताया कि आप कहाँ कहाँ खोजे। हनुमान जी ने कहा मैं रात भर खोजा हूं, खोजते खोजते भोर में आपका कीर्तन सुनाई पड़ा, आप बताइए कहाँ है। तब विभीषण जी ने कहा कि वो तो अशोक वाटिका में है। उन्होंने दिशा निर्देश किया कि यहाँ से इतनी दूर पर इस दिशा में अशोक वाटिका है और वहाँ भी रखी गई है, और उनके साथ बहुत राक्षसियां नियुक्त की गई हैं सीता को धमकाने के लिए, डरपाने के लिए कि तुम रावण को पति मान लो नहीं तो काटेंगे मारेंगे, रावण नियुक्त किया था धमकी देने के लिए। तो बहुत सी राक्षसियां रहती हैं वहां, वे रहती हैं और निरंतर राम 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 रटती रहती हैं, भगवान का ही ध्यान करती रहती हैं, खाती पीती कुछ नहीं। और हनुमान जी ये जब सुने तो बहुत दुखी हो गए। भगवान के विरह में सीता जी भोजन नहीं कर रही थी, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था, जब देखेंगे तब पता चलेगा। तो फिर विभीषण जी से पूरा रास्ता पूछ करके, डायरेक्शन ले करके, और हनुमान जी गए। तो हनुमान जी बहुत छोटा रूप बना करके सीता जी जहां रहती थी उस पर, उस वृक्ष पर चढ़ गए। अशोक वृक्ष था बहुत घना, उस पर चढ़ गया देखने के लिए कि और लोग क्या व्यवहार करते हैं सीता जी के प्रति। तो सीता जी भगवान के ध्यान में डूबी थी, जिस रूप से धनुष बाण लेकर के वे मारीच मृग के पीछे दौड़े थे वही रूप हमेशा सीता जी के मन में स्मरण आ रहा था। और वो जब आंख खोलती थी तो अपने चरण को देखा करती थी, अपने चरण को इसलिए देखती थी कि भगवान श्री राम के बाएं चरण में जो चिन्ह है वो सीता जी के दाहिने चरण में है, और भगवान के दाहिने चरण में जो चिन्ह है वो सीता जी के बाएं चरण में। तो भगवान के चरणों का स्मरण होता था अपना चरण देख करके। तो सीता जी देखती थी तो अपने चरण को देखती थी और कहीं नहीं देखती थी। चरण देखने से भगवान के चरणों का हमेशा ताजा स्मरण रहता था। तो इस तरह से सीता जी को उन्होंने देखा, वो रो रहे थे, राम राम जप रहे थे निरंतर। हनुमान जी ये जब दशा देखे तो रो पड़े वृक्ष के ऊपर, सोचण कपि कल्प संबीता, एक क्षण भी हनुमान जी के लिए कल्प जैसा बीता कि अरे बाप रे बाप, हम सेवकों के रहते और माता सीता इस तरह के दुख में है, बहुत दुख में थी, कि एक क्षण भी कल्प जैसा बीता हनुमान जी को देखकर। उसी समय रावण आया बिल्कुल सवेरे सवेरे, तही अवसर रावण तह आवा, रावण आया और बहुत से अन्य राक्षसियों को लेकर के आया और सीता को समझाने लगा कि सुनो, मंदोदरी आदि सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, एक बार मेरे तरफ देखो और मेरा आलिंगन करो, मेरी भुजा में आ जाओ, मैं अपने को धन्य समझूंगा, तुम मुझे स्वीकार तो करो। इतना सुनते ही सीता जी त्रिधर उठ कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेह, सीता जी घास लेकर के अपने आंखों के सामने कर ली तृण का ओट कि रावण पर दृष्टि ना पड़े। और सुमिरी अवधपति परम स्नेह, परम प्रेमी अपने पति का स्मरण करके सीता जी कही, करे नीच, तुम्हें शर्म नहीं आती है बात कहने में? इस तरह से वाल्मीकि रामायण में सीता जी बोल रही हैं और रामचरितमानस में भी ठीक वही अनुवाद, क्या इस तरह की नीच बात करते हो, कुत्ते की तरह तुम मेरा हरण करके लाए। जब गृहस्थ लोग सो जाते हैं खा पी करके तो कभी कभी कोई कोई कुत्ता रसोई में किचन में घुस जाता है और उच्छिष्ट भोजन करता रहता है, तुमने इतनी शक्ति थी तो हमारे पति के सामने क्यों नहीं हरण किया? कुत्ता कहीं के नीच, और तुम्हारी भुजाओं में मैं आऊंगी? जिनका सुंदर कमल के समान श्याम भुजा है वैसे प्रभु की भुजा में मैं आऊंगी, तुम्हारी भुजा में कभी सोच भी नहीं सकती, और तुम्हारी तलवार भले मेरे गर्दन को काटेगी लेकिन मेरे गर्दन में तुम्हारी भुजा नहीं आ सकती। और मैं इस बात को सुन रही हूं, यही मेरे लिए बहुत दुख की बात, और तुम मारे जाओगे, तुम नहीं जानते हो राम का प्रताप, वे क्षमा नहीं कर पाएंगे तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को, यद्यपि वो क्षमा समुद्र है लेकिन तुमको नहीं क्षमा कर पाएंगे। अब हनुमान जी के मन में ऐसा हो रहा था उस समय कि मैं अभी रावण का वध कर दूं, लेकिन भगवान ने आज्ञा नहीं दिया था, उसी समय वृक्ष से कूद करके उसको मार सकते थे, संभव था, क्योंकि रावण को दो ही व्यक्ति मार सकते थे, मनुष्य या बानर, वो मांगा था इस तरह से वर। तो हनुमान जी का वो क्षण कितना दुख में बीता। अंत में कहा कि देखो चेतावनी दे देता हूं तुमको, अगर एक महीने के भीतर मेरी बात को तुमने नहीं माना तो तुम्हारा मस्तक मैं काट दूंगा। इस तरह से चेतावनी देकर के गया और राक्षसियों को नियुक्त किया, तुम लोग इसको जैसे भी हो भय उत्पन्न करो, भय बस अपने पति को छोड़ देगी और मुझे स्वीकार करेगी, इसे लोभ दो, मेरे वैभव का वर्णन करो और इसके जान जाने का इसको भय दो कि मार 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 दी जाओगी, एक महीने की जिंदगी है, मान जाओ, रावण बहुत अच्छा व्यक्ति है। मतलब कई तरह से उनको सिखाया गया कि ये बोलना, ये बोलना, वो बोलना, और वो राक्षसियां हाथ में तलवार लेकर के सीता रावण के जाने के बाद तुरंत धमकाना चालू की, देखती हो ना, शान धराई हुई तलवार है, एक बार में ही गर्दन काट दूंगी, रावण जैसे प्रतापी को गाली दे रही हो, नीच कह रही हो, इतना साहस तुम्हारा हो गया, कहां पर तुम हो, तुमको ध्यान है, यहां पर मनुष्यों को पका कर खाया जाता है, तुम्हारे तो और कोमल मांस है, कच कच कच्चे खा जाएंगे हम लोग, समझी, भूल करके भी रावण का अपमान मत करो, सोच लो एक महीना काफी टाइम दिए हैं, एक महीने के अंदर तुम रावण को स्वीकार कर लो। लेकिन ये कह करके वो धमकी दे रहे थे, फिर ऐसा हुआ कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी वहां थी, वास्तव में विभीषण जी की खास बहन थी, विभीषण जी खास भाई नहीं थे रावण के, तो त्रिजटा विभीषण जी की बहन थी और विभीषण जी जैसा स्वभाव था, भगवान राम का भक्त थे। तो त्रिजटा कहने लगी सीता जी से, और जो राक्षसियां थी उनको भी बुलाया कि आओ 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 सब सुनो, मैं आज रात में अभी अभी सपना देखी हूं भोर में कि एक बानर आया लंका को जला कर राख कर दिया। मैं एकदम सपना देखी हूं, 4 बजे भोर में सपना देखी हूं। यह सपना मैं कहूं बिचारी हो ही सत्य गए दिनचारी, ये 4 दिन के बाद ही सत्य होने वाला है। दिनचारी मतलब 2-4-10 दिन के अंदर ही सत्य होने वाला है। एक बानर आया और लंका को जला दिया पूरा, और मैं यह देखी कि रावण की रावण का 200 सिर कटा हुआ है और 200 भुजा भी कटी हुई है और बिल्कुल नग्न है और गधा पर चढ़ा हुआ है। मैं सपना देखी इस बात, और जितने राक्षस थे रावण के संबंधी इस लंका में सब मार दिए गए, कोई नहीं बचा और विभीषण जी राजा बने। ये सपना मैं देखी और सीता अपने पति के साथ चली गई, भगवान राम यहाँ आए और लेकर के गए सबको मारकर मटिया मेट करके। ये सपना मैं देखी हूँ, ऐसे मुहूर्त में झूठा नहीं हो सकता है, और तुम लोग भूल करके भी सीता को तंग मत करो, नहीं तो तुम पर भी इसी पाप के कारण में तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तो वो राक्षसियां सीता जी के चरण में गिर गिर करके माफी मांगने लगी, वो सब चली गई कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिजटा की शक्ति पर इनको विश्वास था कि जो बोल रही है सत्य बोल रही है। और फिर वो माता सीता जी से बोली कि सीता तुम शोक मत करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे पति आएंगे तुमको ले जाएंगे और यहाँ के सब लोग मारे जाएंगे, रावण मरेगा सब लोग मरेंगे। ये मैं सपना बिल्कुल विचार करके कह रही हूं, स्वप्न विचार बिल्कुल सत्य होगा। इस बात को जब हनुमान जी सुने तब कुछ सुख हुआ है सीता जी। तो फिर भी सीता जी सोचने लगे कि 1 महीने के अंदर वध कर देगा, कौन भगवान को खबर देगा, कौन संवाद देगा, वे कब आएंगे। अपने पति का स्मरण करके सीता इस तरह से व्याकुल हो रही थी, बहुत बहुत थे। फिर कह रहे थे कि आकाश में इतने तारे हैं, कोई एक तारा टूट करके गिर जाता तो मैं जल करके मर जाती। त्रिजटा से बोली सीता जी कि हे सखी, कहीं से आग लाओ और सूखी लकड़ी लाओ, मैं ईंधन जुटा करके चिता बना करके और जल जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति का वियोग नहीं सह सकती, मेरे लिए बहुत हो गया बहुत हो गया, अब मैं नहीं जीना चाहती। लेकिन त्रिजटा बोली कि देवी अभी रात के समय कहीं आग नहीं मिलेगा, नहीं अब आग नहीं है, अभी भी कुछ कुछ भोर था तो ये आग नहीं मिलेगी और काठ भी नहीं, और मैं अगर जुटाऊंगी तो रावण को पता लगेगा कि ये इसको जलाने के लिए जुटा रही है, तो पहले तो हमको मार देगा, इसलिए अब ये हठ मत करो। तो फिर सीता जी कहते हे अशोक, मेरा शोक दूर करो, तुम ही कोई आग गिराओ गिराओ। तो हनुमान जी को ऐसा अवसर मिला, हनुमान जी भगवान के गुण का वर्णन करने लगे ऊपर से, भगवान श्री राम इस समय यहाँ हैं यहाँ हैं, सुग्रीव उनके मित्र बन गए हैं और हनुमान जी से भी उनका परिचय हुआ है, वे आ रहे हैं लंका की ओर और बस थोड़े दिन में ही रावण का विनाश कर देंगे। इतनी अच्छी कथा हनुमान जी कहे, इतनी अच्छी कथा कहे कि सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम कथा के सबसे बड़े विद्वान हैं, ऐसी कथा कहे, ऐसी कथा कि सीता को ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने प्रियजन श्री राम के साथ में हूं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा वर्णन है कि उद्धव जी जब कृष्ण कथा कह रहे थे गोपियों में, तो गोपियों का विरह दुख दूर हो गया, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रियतम श्याम सुंदर हमारे साथ हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। तो हनुमान जी भगवान राम की कथा कहने लगे, गुण वर्णन करने लगे, कैसा गुण है कि भगवान श्री राम सीता जी के साथ ऐसे रहते हैं, लक्ष्मण के साथ ऐसे वैसे, तो सीता जी को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं राम के साथ हूँ, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सीता का विरह दुख कम हो गया। इसके बाद जब वे बार बार आकाश की ओर देख रहे थे, याचना कर रहे थे अग्नि की, तो श्री हनुमान जी मुद्रिका फिंगर रिंग भगवान श्री राम लगाए थे उसको गिराए। वास्तव में भगवान राम की मुद्रिका नहीं थी, सीता जी की थी, परंतु सीता जी ने वो मुद्रिका गिरा दिया था वहां पर, जहां मैं कल कहा था कि बानर लोग जहां मीटिंग कर रहे थे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, तो वहां सीता जी ने अपने रेशमी वस्त्र में उत्तरीय में बांध करके अपने कुछ गहनों को गिरा दिया था। तो सुग्रीव जी ने जब वो दिया गहना तो भगवान श्री राम वो रख लिए, बहुत प्रिय लग रहा था, भगवान अपनी प्रियतमा के अंगूठी को रख लिए थे। और जब हनुमान जी आ रहे थे तो भगवान ने वो अंगूठी दिया था कि सीता को ये दिखाना, जिसे विश्वास करे सीता के वास्तव में तुम मेरे दूत हो, मैंने तुमको भेजा है, कोई पहचान तो चाहिए ना। तो उस अंगूठी को गिराए हनुमान जी सीता जी के सामने, सीता जी तुरंत उठ करके देखी और उस पर राम नाम लिखा हुआ था, राम लिखा हुआ था, और सीता जी की अंगूठी थी। तो वो फिर सोचने लगे, अरे तुरंत शोक में मन भर गया, क्या हमारे प्रियतम का कोई वध कर दिया, वो अंगूठी छीन लिया, क्या किया, बड़े दुख में पड़ी। तो फिर हनुमान जी फिर भगवान का गुण गाने लगे, वो दुख में पड़ गए, सोचने लगे कि माया से तो ऐसा कोई रच नहीं सकता है, माया तो ऐसा रच नहीं जाई, ऐसी अंगूठी किसी के पास नहीं है और माया के द्वारा रची नहीं जा सकती, इसका डुप्लीकेट बनाया नहीं जा सकता, क्या हो गया क्या हो गया। फिर शोक में पड़े तो हनुमान जी फिर कथा कहने लगे। तब सीता जी ने कहा कि जो इस तरह से मेरा दुख दूर कर रहा है, राम की कथा कह रहा है, वो क्यों प्रकट नहीं हो रहा है भाई, प्रकट हो, प्रकट हो, तुम कौन हो। तब श्री हनुमान जी उतरे पेड़ से और उतर करके सीता जी को प्रणाम किए। लेकिन फिर भी सीता जी ऐसे जगह में थी कि विश्वास नहीं हुआ कि ये राम का दूत है, उन्होंने सोचा कि कोई राक्षस माया से ऐसा भंग करके और कुछ कह रहे, इतनी सुंदर कथा कहे, सब कुछ किए, मुद्रिका वही है, लेकिन फिर भी सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। सीता जी पूछने लगी कि तुम कौन हो, नाम बताए, गांव, हमारे प्रियतम श्री राम से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ, तो बताया कि ऐसे ऐसे परिचय हुआ, ऐसे पूरा सत्य सत्य कंप्लीट बताए। फिर सीता जी पूछते हैं कि नर बानर ही संगति कैसे, बानर में और मनुष्य में कैसे मित्रता हो गई। तो हनुमान जी पूरा वर्णन किए सुग्रीव की मित्रता का और सब खूब अच्छा से वर्णन किए, तब सीता जी को विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि तुम ऐसे कहते हैं कि बेटा तुम ऐसे समय में हमें दर्शन दिए आए कि मेरी मेरा प्राण तुमने बचा लिया, नहीं तो अब तो मैं मरने की तैयारी में थी, मैं मर जाती। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं भगवान जल्दी आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो सीता जी बहुत प्रसन्न मन से श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देती, अजर अमर गुण निधिसुत हो हूं, करं सदा रघुनायक छो हूं, कि तुम अजर हो अमर हो, सारे गुणों की निधि हो जाओ और भगवान श्री राम तुमसे हमेशा स्नेह करें, हमेशा प्रेम करें। यह आशीर्वाद सुनकर के हनुमान जी को रोमांच हो गया, आंखों में आंसू आ गया, वे जानते थे कि माता सीता का आशीर्वाद अमोघ है। और सबसे बड़ा सबसे बड़ी उनको खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने कहा कि करो ही सदा रघुनायक छो, तुम पर श्री राम हमेशा स्नेह करें, प्रेम करें, कभी प्रेम ना घटे राम का तुम्हारे प्रति। इस आशीर्वाद से हनुमान जी का हृदय खिल गया, बहुत अच्छा लगा है। और अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर बनो, अमर बनो, कभी वृद्ध न हो, तुम्हें बुढ़ापा कभी न आवे, इसका मतलब अजर जरा रहित, और अमर तुम्हारी मृत्यु कभी न हो। तो पूरा बलवान रहो और कभी न मरो, और भगवान श्री राम तुमसे प्रेम करे। तुमने मेरे जीवन की रक्षा किया है, मेरे प्रियतम के गुणों को सुना करके तुमने मुझे तृप्त कर दिया, इतने दिन का दुख सब चला गया। इस तरह से आशीर्वाद दे रहे थे तो हनुमान जी बहुत धन्यवाद दिए माता सीता को कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद अमोघ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाद में उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि ये जो बगीचा है तो इसके कोमल कोमल पत्ते फूल आदि से माता सीता को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि विरहिणी स्त्री को ये सब श्रृंगार की चीजें बहुत दुख देती है। चंद्रमा का उगना काल जैसा लगता है, कोयल की बोली हृदय में हुक पैदा करती है, किसी खिले हुए नौ पल्लव वृक्ष के और पुष्प सब उसे जलाते। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान राम के विरह में इसको अच्छा नहीं मान रहे, तो उन्होंने सोचा कि इस बगीचे को पूरा उजाड़ कर खत्म कर दूं जिससे सीता को सुख मिले। तो वे कहते हैं कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फल खाना चाहता हूं, जब से चला किष्किंधा से तब से कुछ खाया पिया नहीं, और वास्तव में रात भर वो क्या खाए, वहां कोई खाने लायक वस्तु थोड़े लंका में थी, कहीं गोविंदा होता होता तो खा लिए होते कुछ, और तो क्या खाए वो, सब जगह तो ताड़ी शराब मांस यही खा पी रहे थे, तो क्या खाए, हमको भूख लगी है और मैं कुछ खाना चाहता हूं। सीता जी ने पूछा कहाँ खाओगे, ये फल लगा हुआ है ना सब, ये फल अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खाऊं। तो सीता जी ने कहा कि ठीक है, भगवान राम का चरण कमल हृदय में रख करके और खाओ। तो मतलब भगवान का स्मरण करते रहो। तो श्री हनुमान जी चढ़े वृक्षों पर, बहुत सुंदर सुंदर सब प्रकार के फल थे, खाए, फल तोड़ तोड़ करके पहले भगवान राम का स्मरण किए, मतलब भोग लगाए, और इसके बाद तोड़ना चालू किए वृक्ष, धड़ धड़ तड़ तड़ किसी वृक्ष को उखाड़ करके दूसरे वृक्ष पर मारना, किसी की शाखा तोड़ना, तहस नहस करना। और बगीचे के जो गार्डनर थे, रखवाले थे, माली जा करके रावण से कहे कि यार एक बलवान बानर आया है और सारा आपका जो सबसे फर्स्ट क्लास का बगीचा है उसको उजाड़ रहा है। उजाड़ रहा, पहले तो वो लोग हनुमान जी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें से ज्यादा लोगों को हनुमान जी ने मार दिया, वृक्षों से ही ऐसे मारा, जोर से झटका के मर गए। कुछ बचे तो वे जाकर रावण से कंप्लेन किए कि ऐसा ऐसा आया है, पता नहीं कहाँ का बानर है, हमने ऐसा बलवान बानर नहीं देखा। तब रावण कुछ स्पेशल सैनिक भेजा, जाओ जाओ देखो कहाँ कौन बानर है, ऐसा उपद्रव, बानर को तो एक मिनट में मारा जा सकता है। तो भेजे और लोग आए, वो लोग लड़ने के लिए, तो हनुमान जी वृक्ष की शाखा से किसी को गदा से और किसी को वृक्ष उखाड़ करके और मार दिए। उसमें से एक दो बच्चे जाकर कहे कि वो सारी पलटन खत्म कर दिए। तब वो अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, नाम अक्षय था, मरने वाला नहीं था, उसको हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ करके इतना जोर से मारा कि वो मर गया। रावण का बेटा, बहुत छोटा बेटा सबसे। इस बात को जाकर के कुछ लोगों ने कहा कि आपका पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। अरे उस बानर की शक्ति कितनी है महाराज, कहा नहीं जा सकता। तब उसने मेघनाद को, इंद्रजीत जिसका नाम था, जो इंद्र को एक बार जीत लिया था, मेघनाद, उसको भेजा और कहा कि उसको मारना मत, पकड़ करके लाओ जरा, मैं देखना चाहता हूं कौन है बानर भाई, इतना उपद्रव किया, बाप रे बाप, मेरा प्रिय बेटा मारा गया, ये कौन शैतान बानर आ गया इधर। तो मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ को मूर्छित कर दिया हनुमान जी ने मार करके। लेकिन बाद में मेघनाथ यज्ञोपवीत को अपने बाण में लपेट करके ब्रह्मा मारा, ब्रह्म अस्त्र को। तो हनुमान जी ने देखा कि अगर मैं जनेऊ को तोड़ देता हूं तो एक महिमा मिट जाएगी, ठीक नहीं है। तो बंधन में आ गए, बंधन में आ गए। उनको बांध करके मेघनाथ और रावण के संसद में लाया, जहां सब बैठते थे उसके, सब लोग, सारे सांसद बैठते थे। तो लाया, हनुमान जी को कोई आसन नहीं दिया गया, मैंने खड़ा रह करके बातचीत करना था। बानर का सत्कार तो करना नहीं था, तो बहुत द्रोही बानर, धूर्त, बहुत हत्या किया है, मारा है। तो रावण के सामने पेश किया गया पकड़ करके, कोई आसन नहीं दिया गया। रावण ये नहीं कहा कि बैठो उस कुर्सी पर, बैठ जाओ। और सब लोग बैठे थे मंच पर, कुर्सी पर। हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने देखा कि हमको बैठने के लिए कोई आसन नहीं बना रहे, तो अपने पूछ को इतना लपेटे कि रावण से भी ऊंचा आसन बना करके बैठ गए। तो रावण देखने लगा कि अरे बाप रे बाप, कितना बेवकूफ बानर है, इसको बैठने का भी ढंग मालूम नहीं है कि राजा के पास कैसे बैठना चाहिए। रावण पूछता है हनुमान जी से, कहलन केस कवन तय कीसा, केही के बल घाले से बल खीसा। और मारे निश्चर केही अपराधा, सुनु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। किधो श्रवण सुने सुनसी नहीं मोही, क्या मेरे जस को नहीं सुने हो, देखूं अति निशंक सठ तो ही। तुमको मैं बिल्कुल निर्भय देख रहा हूं, रावण के कैबिनेट में बैठ करके भी तुमको कोई भय नहीं हो रहा है, जहां केवल राक्षस ही राक्षस भरे हैं इतना, और तुमको कोई भय नहीं हो रहा है। उधर जाकर के मार दिया अक्षय को, अशोक वाटिका उजाड़ा। तो प्रश्न किया, कह लंकेश कौन तय कीसा, तुम कौन बानर हो, व्हाट इज योर आईडी, पूछा मतलब तुम्हारे बाप का नाम क्या है और तुम किस गांव के हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न किया, कही के बल घाले से बन खीसा, देखने में तो तुम्हें कोई बल है नहीं, किसके बल से तुम बन को उजाड़े। अरे दुष्ट, मेरा जस नहीं सुना हो क्या कि रावण कितना प्रतापी है, तो क्यों ऐसा पूछ रहा है। वो कहता है, देखो अति निशंक सठ तो ही, तुमको मैं बिल्कुल निर्भय देख रहा हूं, इसका मतलब मेरे बारे में कुछ सुने नहीं हो ना, अगर सुने होते तो हाथ जोड़ करके खड़े होते, डरते, सुने नहीं हो ना मेरे बारे में। फिर प्रश्न करता है, मारे से निश्चर के ही अपराध है, किस अपराध से निशाचरों को मारा, क्या वो गलती किए थे। ये प्रश्न करो, क्या क्यों मारा, ये लोग क्या गलती किए थे, बगीचा की रक्षा कर रहे थे ना, ये क्या अपराध किए। अरे दुष्ट, तुमको अपने प्राण जाने का कोई भय नहीं है क्या, तुम मार दिए जाओगे यहां, इस ये सोच करके तुमको कोई भय नहीं लगता है क्या। तो पहले तो पूछा कि तुम कौन हो, तो श्री हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी ने बोलना चालू किया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। यह माया शक्ति जिनके आदेश को पा करके अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, मैं उनका दास हूं। ये कहने का आशय, कई बात बोल करके कहे मैं उनका दास हूं, उनका दास हूं। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिनकी शक्ति को पा करके ब्रह्मा विष्णु और महेश इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, मैं उनका दास हूं, यही मेरा परिचय है। हनुमान जी अपने बाप साहब का नाम नहीं बताए, मैं राम का दास हूं, यही परिचय है। दासो हम कौशलेंद्रस्य, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, मैं कौशलेंद्र का दास हूं, यही वास्तव में जीव का परिचय है। जीव का स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास, और क्या परिचय दिया जाए। और फिर कहते हैं कि जाबल शीश धरत सहसानन, अंड को समेत गिरकानन, भगवान शेष नाग जिनकी कृपा से जिनके बल से इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं पर्वतों के साथ समुद्रों के साथ, उनका मैं दास हूं। और धरई जो विविध देह श्रोत्राता तुमसे सठन सिखावन दाता, और जो जुग जुग में अवतार लेते हैं तुम्हारे जैसे दुष्ट को मारने के लिए, मैं उनका दास। इतना निर्भय बोल रहे हैं, तुमसे सठन सिखावन दाता। सारा समाज रावण का भरा हुआ है और कहते हैं तुम्हारे जैसे खल को शिक्षा देने के लिए जुग जुग में जो अवतार लेते हैं, मैं उनका दास। इस तरह से बोल रहे हैं और अंत में कहे जाके बल लवलेश ते जीते हुए चराचर झार, ताश दूत में जाकर हरि आने से प्रिय नार। और तुम भी रावण सुनो, भगवान श्री राम के बल से ही चर अचर संपूर्ण जगत को जीत लिए हो, तुम में जो बल है वो भी उनका ही बल है। यह बात वास्तव में श्रीमद् भागवत की है। हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद महाराज ने कहा कि तुमने जो बल आ रहा है वो भी कृष्ण का ही है और मुझ में जो आ रहा है वो भी कृष्ण का ही है। जाके बल लवलेश ते, जिनके थोड़े से बल को पा करके तुम चर अचर को जीत लिए हो, ताश दूत मैं उन्हीं का दूत हूं, जाकर हरि आने से प्रिय नार, जिनके प्रिय नारी को पत्नी को तुम हरे हो, मैं उनका दास। अच्छा, रावण के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, तो मैं भगवान राम का दास हूं, ये परिचय हुआ। अच्छा ठीक है, मेरा सुजस नहीं सुने थे, मेरे प्रताप की कहानी नहीं सुने थे? तो हनुमान जी कहते खूब सुने हैं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्रबाहु सन परी लड़ाई। हाँ खूब सुना हूं कि सहस्रबाहु के साथ लड़ने गए थे ना, क्या दशा हुई थी, खूब मालूम है कीर्ति, कितना प्रतापी हो। एक बार सहस्रबाहु ने एक बार रावण गया अपने पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में विहार करने, तो कैंप लगाया था नदी के तट पर जबलपुर के पास, माहिष्मतीपुर के पास, और सहस्रबाहु रहता था। 1000 भुजा प्राप्त थी भगवान दत्तात्रेय की कृपा से। तो सहस्रबाहु को दिखाने गया था कि मेरे पास कितनी ब्यूटीफुल स्त्रियां हैं और मैं कितना प्रतापी हूं, अगर हमको कुछ भी डिस्टर्ब किया तो मैं सहस्रबाहु से भिड़ूंगा, लड़ूंगा। तो रावण ने शिविर लगाया और अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था पानी में। तो एक बार की बात है, रावण जब अपने शिविर में था, खा पी रहा था, स्त्रियों के साथ बैठा था, तो सहस्रबाहु नर्मदा जिस जहां था उसके नीचे अपने 1000 बाहों से डैम बना दिया, नर्मदा जी पर बांध बना दिया, तो पानी का लेवल ऊपर चढ़ने लगा। तो रावण के जितने शिविर थे पानी में डूबने लगे, स्त्रियां गोता खाने लगी वो नीचे बांध बना दिया, तट तो पूरा डूबने लगा, स्त्रियां हाय 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 करने लगी। रावण पूछते है कौन शैतान ऐसा काम किया, कौन ऐसा काम किया, तो पता लगा सहस्रबाहु। अच्छा ठीक है, तो उसे लड़ने के लिए वो जा रहा था, तब तक सहस्रबाहु ने उसको अपने एक हाथ से 1000 भुजा में से एक भुजा से उसके कंठ को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कीड़ा को पकड़ ले, छोटे से कीड़ा को टांग लिया रावण को। ये सत्य घटना, भागवत में भी एक कथा दी गई है, बिल्कुल पकड़ लिया। इतना बलवान जादव था वह सहस्रबाहु अर्जुन, भगवान दत्तात्रेय की कृपा थी उस पर। वो पकड़ लिया, कहा कि बोलो क्या करूं। अब वो क्षमा मांगने लगा, छोड़ दीजिए। तो सहस्रबाहु के घर के लड़के उसको राजभवन में खड़ा करके उसके 10 मस्तक पर 10 दीपक जलाए थे, शायद वो दीपावली का दिन रहा होगा, हो सकता है और खड़ा का अगर हिला तो कोड़ा से मारेंगे हम लोग, चुप खड़ा रहो। और जैसे मूर्ति बनाते हैं ना, कभी कभी मूर्ति सिर पर लिए रहता है, तो डायरेक्ट रावण सिर पर दीपक लेकर के खड़ा था। बाद में उसके दादा आए, पुलस जी छुड़ा करके ले गए, छोड़ दीजिए गलती किया। तो हनुमान जी कहता है तुम्हारी प्रभुताई तुम्हारा प्रभाव खूब सुना हूं, सहस्रबाहु के साथ युद्ध हुआ था ना, खूब जस फैला हुआ है, दुनिया के सारे न्यूज़पेपर में आया था, खूब सुना है खूब सुना है, नया नहीं हूं। और समर बाली शंकर जस पावा, और बाली के साथ भी युद्ध करके तुमको जो जस मिला है वो भी मुझे पता है, 6 महीना रखा था कोख में दबा करके ना। एक बार की घटना है, रावण गया बाली से युद्ध करने अंगद के पिता से, तो बाली उस समय संध्या वंदन कर रहे थे, गायत्री कर रहे थे, तो संकेत किए कि बैठो बैठो बैठो। रावण कहा नहीं, तुम वीर हो तो मुझसे युद्ध करो, मैं युद्ध करने आया हूं, वीर लोग किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो समझा रहे थे चुपचाप, बोल तो नहीं रहे थे, बैठो बैठो ऐसे संकेत करके, हमारे संध्या बंधन पूरा हो जाने दो, इसके बाद युद्ध करूंगा। रावण आया करके उनको डिस्टर्ब कर रहा था, तो बाली ऐसे उसके दस मस्तक को पकड़ा, पकड़ करके कांख में दबा करके गायत्री जपने लगे और 6 महीने तक रखा है, 6 महीने तक खाया पिया भी नहीं, ऐसे कीड़ा की तरह दबा करके रखा। तो हनुमान जी कहते हैं खूब पता है खूब सुना है, समर बाल सल करी जस पावा, सुनिकपि वचन बिहस बिहरावा। तो इस बात को रावण ऐसे टाल दिया हंस करके जैसे सुन ही नहीं रहा है। रावण भी बहुत ट्रिक जानता था, आहा हंस करके टाल दिया कि कोई दूसरा न ध्यान देने पर। तुम्हारे जस सुना है, अच्छा ये पेड़ क्यों तोड़ा, क्यों असुरों को मारा, तो कहता है सुनिए, खाया फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी तो फल खाया, बानर तो फल ही खाता है ना, तो फल खाया, ठीक है फल खा लिया, अरे मान लो 10-20 किलो फल खा लिया, तो पेड़ क्यों तोड़ा, तो कहते कपि स्वभाव ते तोड़े रूखा, ये बानर का स्वभाव है पेड़ तोड़ता है, अपने स्वभाव से बाध्य होकर के तोड़ दिया, जैसे तुम अपने स्वभाव से गुंडागर्दी करते हो, अच्छा हमारा स्वभाव है पेड़ तोड़ना, हम बानर हैं इसलिए तोड़ दिया। तो इन निशाचरों को क्यों मारा, किस अपराध से, तो कहते हनुमान जी सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमारक गामी, आपको पता है अपना देह कितना प्रिय होता है, ये कुमारक गामी पापी लोग आकर के मुझे मारने लगे, तो जिन्हों ही मारा तिन्हों मारा, तेह पर बांधे तनय तुम्हारा, तो जिन्होंने हमको मारा उनको मैं मारा, टिट फॉर टैट नियम, हम क्यों सहे, हमको देह प्रिय नहीं, हमको कोई मारेगा और हम चुपचाप रह जाएंगे, हमको जिन लोगों ने मारा तो मैं उनको मारा, और बानर का स्वभाव होने से मैं पेड़ तोड़ा, हमने कोई गलती नहीं किया, और फिर भी तुम्हारा बेटा आकर के हमको बांध कर लाया, तो इस समय बांधने का तुमको लज्जा नहीं आ रहा है, तो नहीं मुन कछु बांधे कई लाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा, मैं चाहता था कि तुम्हारे दरबार में मैं आऊं और तुमको कुछ शिक्षा दूं, तो अच्छा हुआ बांध करके तुम्हारा बेटा लाया, मैं ऐसे भी आना चाहता था, इसीलिए मैं बंधन स्वीकार किया, हिम्मत से जो कि हमको बांध कर लाया है, मैं बांध कर आया हूं। तब हनुमान जी अब अपनी ओर से प्रीचिंग चालू किए लंका में, विनती करऊं जोर कर रावण, और भ्रम तो सुनऊ सिखाव न सक, मैं तुमसे विनय कर रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दो, तुम भ्रम छोड़ करके भगवान राम का भजन करो, इस तरह से इंद्रियों के सुख में पड़ करके पाप कर रहे हो, ठीक नहीं है, भ्रम छोड़ो अज्ञान छोड़ो और भगवान राम का भजन करो, देखो तुम निज कुल ही विचारी, पहले तो तुम ये विचार करके देखो कि तुम किस वंश के हो, कितना हाई क्लास के ब्राह्मण वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पूर्वज कितने बड़े हैं, शुद्ध हैं, ऋषि मुनि, पहले तो अपने खानदान को देखो, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए अपने पूर्वजों के भाव को, देखो अपने वंश को, तो भगवान का तुम भजन करो। इस तरह से हनुमान जी बोलते जा रहे थे कहे कि प्रणतपाल रघुवंश मन करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विषाख। तुमने बहुत अपराध किया है, माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम सीता को ले जाकर के हाजिर करोगे और भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाओगे तो तुम्हारे सीता हरण के अपराध को माफ कर देंगे। ठीक है, बेचारे के मन में पाप आया, हर करके ले गया, लेकिन बाद में सद्बुद्धि आई, भगवान तुमको माफ कर देंगे, मैं उनका स्वभाव जानता। बेटर यही है कि सीता जी को तुम दे दो और भगवान से माफी मांग लो। बहुत कृपालु है भगवान, तुमको शरण में रख लेंगे। और रामचरण पंकज उर्धरहुं लंका अचल राज तुम करो। अगर तुम लंका का राज करना चाहते हो तो अचल अमर बन करके राज करो, लेकिन राम का भक्त बन करके, राम से द्रोह करके तुम नहीं जी पाओगे। राज करने की बात तो दूर है, यहां तक हनुमान जी ने कह दिया कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही राख न सक राम कर द्रोही। शिव जी के भक्त होना, हजार शिव और हजार विष्णु मिल करके भी राम के द्रोही की रक्षा नहीं करेंगे। जिस दिन राम लंका में आ जाएंगे उस दिन तुमको पता चलेगा, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। शिव जी पर भरोसा है ना, एक शिव के हजार शिव खड़ा होंगे वो भी नहीं तुमको बचाएंगे। तुम मेरी शिक्षा मानो तो रावण क्या कहता है हंस करके, वाह मैं भी बहुत फॉर्चुनेट व्यक्ति हूं कि मुझको बानर गुरु मिला, वाह। लगता है कि इसके पहले हमको कोई गुरु नहीं मिला है, इतना तुम बोल रहे हो भजन करो भजन करो। दुष्ट कहेंगे तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है, अभी मारूंगा बस मर जाओगे। उपदेश देने में शर्म नहीं आती है, किसको उपदेश दे रहे हो? अपना पोजीशन देखो, बानर कहीं के और चले हो इतने बड़े व्यक्ति को उपदेश करने। तो जब वो कहा कि अभी मार दूंगा तो हनुमान जी कहते उल्टा हो ही, कहे हनुमान उल्टा हो जाएगा, अभी मार दूंगा, समझे? केवल उपदेश ही नहीं कर रहा हूं, अगर कुछ किया ना तो अभी मार दूंगा, तुम मर जाओगे। उल्टा हो ही कहे हनुमान, उल्टा हो जाएगा, जो कहता हूं चुपचाप सुनो, अगर कुछ गड़बड़ किए तो अभी मार दूंगा। इस सभा में इतना निर्भय बोलना, हनुमान जी का अद्भुत प्रताप, अभी मार दूंगा। अब तक नहीं मारा, जानते हो क्या कारण है? इसलिए कि भगवान ने हमको तुमको मारने की आज्ञा नहीं दिया, यही बहुत भारी अफसोस है। अगर मारने की आज्ञा दिया होता तो तुमको मैं उपदेश करता, उपदेश नहीं मानता तो दसों मस्तक अभी तोड़ करके सीता को उठा कर ले जाता, समझे? भगवान की कृपा से मैं इतना समर्थ हूं, तुम जो कह रहे हो अभी मैं तुमको मार दूंगा ये कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करें, भगवान ने मुझे आज्ञा नहीं दिया है, मैं तो अभी मार करके चला जाता। तब इस पर रावण बहुत क्रोधित हो गया, कहा बस बस मारो मारो इसको मारो मारो। तो हाथ में तलवार और आयुध लेकर के राक्षस हनुमान जी को मारने चौड़ दौड़ दौड़। जब ही मारने चले तब तक ताही समय विभीषण आए। विभीषण जी अन्य मंत्रियों के साथ उसी समय ठीक आगे जब मारने जा रहे थे, तो इनसे तो परिचय था लेकिन कह नहीं सकते थे कि अरे ये हमारे परिचित हैं या ये हमारे गुरु हैं, इनको छोड़ दो, ऐसा कह नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, ये दूत है ना किसी का, दूत का इस तरह से वध नहीं करना चाहिए, नीति है ये, राजा की नीति है। रावण से उन्होंने कहा कि भैया दूत का वध नहीं करना चाहिए। तब रुक गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वध नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना बदमाश है कि इच्छा तो यही करती है कि अभी मार दिया। इतना कठोर बोल रहा है, इतने लोगों का वध भी किया, सुखवाटिका उजारा, और ऐसा बोलता है जहर जैसा, क्या इसको सहन किया जाए? लेकिन विभीषण जी ने कहा कि आखिर नीति से काम करना चाहिए ना, राजा की नीति है दूत का वध नहीं करना चाहिए, नीति विरोध न मारिए दूता, दूत का वध नहीं करना चाहिए। तब राम मान गया, अच्छा ठीक। तो फिर मीटिंग करके परामर्श करने लगा क्या करना चाहिए। विभीषण जी ने स्वयं कहा कि कोई अंग भंग करके भेज दीजिए, कोई अंग भंग कीजिए, मतलब कोई पैर थोड़ा काट लीजिए या हाथ की उंगली काट लीजिए या नाक काटिए कान काटिए जो भी, तो अंग भंग करी पठाइए बंदर। तो इस बानर को अंग भंग कीजिए, जान से मत मारिए। क्या किया जाए, रावण विचार करने लगा। तब कपिकय ममता पूछ पर सब ही कहा समझाए, तेल बोरी पट पावक देह लगाए। रावण स्वयं कहता है बानर की बहुत ममता होती है अपने पूछ पर, तो एक काम करो कि इसकी पूछ जला दो, इसके पूछ में कपड़ा लपेटो और कपड़ा लपेट करके घी या किरासन का तेल लगा दो और आग लगा दो, तो ये पूछ तो जल जाएगा। ऐसे पूछहीन बानर जाएगा अपने स्वामी के पास, राम के पास, तो देखेगा हमारा बल, बाप रे बाप, यही तुम्हारा बल है कि एक बानर की पूछ जला दी। देखिए रावण ये सोच रहा है, तब इसका स्वामी आएगा ही नहीं लंका में, अपने दूत की ये दुर्दशा देखेगा। तो रावण ने कहा कि इसकी पूछ जला दो। तो लोग लाने लगे, कुछ लोग कपड़ा रजाई मोटा मोटा तो सक लाते थे, क्योंकि बाढ़ी पूछ की न कपी खेला। हनुमान जी अपने पूछ को बहुत लंबा बढ़ाए, जिससे कि जितने भी कपड़े थे लंका में, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपी खेला। लोग ला रहे थे तो लंका में कोई कपड़ा बचा नहीं पूछ में लपेटने के लिए, सब लग गया और न तो तेल बचा, तेल भी सब खलास हो गया, तेल भी सब खत्म हो गया, और हनुमान जी के पूछ में कपड़ा सब लपेट दिया गया। तो हनुमान जी ने जब सुना कि रावण कह रहा है कि इसके पूछ को जला दो, तो श्री हनुमान जी कहे ओ सरस्वती जी रावण की जीभ पर बैठ करके अब मेरा मदद कर रही, मतलब लंका को जला दूंगा, ये सोचे वे इसी आग से। भई सहाय शारद में जाना, तो जब पूछ बढ़ाए बहुत दूर तक और सारा कपड़ा सारा तेल, तो ग्रंथकार तो कहते हैं कि रहा न बसन नगर घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, उस लंका नगर में बसन मतलब वस्त्र और तेल और घृत ये सब बचा ही नहीं। सब बड़े कुतूहल चला रहे थे, ए हमारा भी कपड़ा लपेट दो, हमारे घर में भी दो चार किलो घी है, लगाओ लगाओ। तो हनुमान जी खेला, ये खेल किए, और जब आग लगाई गई तो आग लगने के बाद जब आग प्रज्वलित हुई तो नींबू की चढ़े कपी कटक अटारी, सोने के महल पर चढ़े, और उसी समय इंद्र की प्रेरणा से 49 मरुदगण चारों तरफ से बवंडर आंधी हवा चालू हुई और हनुमान जी ने लंका को जलाना चालू कर दिया। इतने जोर की हवा चल रही थी, हवा को अग्नि का सारथी कहा गया, अगर हवा तेज रहती है तो आग और काम करती है। तो बहुत प्रकार से जलाया जलाया हनुमान जी ने, बहुत जलाया, रावण का राज भवन वगैरह जला करके विद्रूप कर दिया, खाक कर दिया कहीं कहीं चारों तरफ, और उसमें कितने राक्षस मरे जले, भागो 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 भागो, पानी पानी पानी, सब रानी और कुलानी कहें। एक कविता है कि रानियां कहती हैं वाटर विभाग क्या कर रहा है, पानी 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 पानी, ये फायर विभाग कहाँ गया, आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ, ये करो ये करो वो करो वो करो। हनुमान जी पूरा चारों तरफ से देख करके लंका का दाह कर दे, जला दे, और जला करके इसके बाद समुद्र में कूदे अपनी पूछ बुझाने के लिए। पूछ जलक थोड़ा भी नहीं, यहां तक कि फोला भी नहीं पड़ा हनुमान जी के पूछ पर, जलने की बात तो दूर है, फफोले भी नहीं पड़े, और समुद्र में अपनी पूछ बुझाए, स्नान किए, और इसके बाद फिर जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करजोर, फिर सीता जी के साथ सामने आकर खड़े हुए, कहे कि माँ जैसे भगवान ने मुद्रिका दिया था पहचान के लिए, ऐसे आप हमको कुछ दीजिए, इसे मैं भगवान को दूंगा। तो सीता जी ने अपना चूड़ा मणि उतार करके दिया, जो स्त्रियां सिर पर गहना पहनती हैं यहाँ, तो उसको उतार करके दिया। हनुमान जी के जाने से सीता जी रोने लगी कि ओ तुम जब थे तो मेरा सुख से दिन बीता, तुम भी जाने को कहते हो, प्रभु से मेरी दशा को कहना है, संदेश कहना है, ये कहना है, वो कहना है। इस तरह से हनुमान जी लंका का दाह किए और आकर के भगवान श्री राम से सीता के बारे में बताए कि वो बहुत दुखी है, चलिए चलिए चलिए। सीता जी का जो वर्णन कर रहे थे हनुमान जी तो अजीब तरह से किए, और एक वाक्य उन्होंने कहा कि सीता कर अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला। हे दीन बंधु, सीता की सीता का संकट इतना ज्यादा, इतना दुख में है, इतनी विपत्ति में है कि उसके बारे में कुछ न कहा जाए यही अच्छा है, कहना ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा दुख है। तो भगवान श्री राम व्यंग किए, वो कहते हैं कि मनक्रम वचन मोर गति जाहि, सपने बूझ ये विपत्ति किताहि। हनुमान जी आप कह रहे हैं कि वो मन क्रम वचन से मेरा भक्त है, मेरी पत्नी है, पतिव्रता है, और फिर कह रहे हैं कि दुख है, लेकिन सिद्धांत है कि मेरा जो मन क्रम वचन से भक्त है उसको सपने में भी दुख नहीं होता है, ये नियम है। तो फिर आप उसको भक्त भी बता रहे हैं और दुख भी बता रहे हैं, ये कैसे संभव है? जब मेरा भक्त है तो दुख क्या है? तो हनुमान जी तुरंत संभल गए, कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक तो सुमिरन भजन न होई। इस सबसे भारी विपत्ति ये है कि वे राक्षस उनको धमकाते हैं, ऐसे करते हैं, तो कभी कभी आपका भजन छूट जाता है, ये विपत्ति है। अरे बाप रे बाप। और पहले कहे कि बिना ही कहे भल दीन दयाला, सीता करा तो विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला। सीता की विपत्ति को न कहा जाए यही अच्छा है, कहना ठीक नहीं। भगवान ने कहा कि अरे मेरे भक्त पर विपत्ति हो सकती है, सिर्फ मेरे भक्ति से बहुत सुख मिलता है। तो कहते हाँ, लेकिन कभी कभी भजन छूट जाता है, ये दुख है ना, डिस्टर्ब हो जाती है सीता जी, ये दुख है। हनुमान जी भी बोलने में बहुत चतुर है, भगवान ने इनको आलिंगन दिया है बहुत प्रेम से, यही भगवान का महादान था हनुमान जी के प्रति, बहुत भगवान प्रेम करते थे हनुमान जी से। इसलिए आप देखते हैं कि उनकी प्रिया सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी रहते हैं, सबसे अंतरंग सेवक। हनुमान जी का अपना कोई परिवार नहीं है कि राम दरबार में सेवा करके और फिर वहां से कुछ पगार लेकर के अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को दे। बस राम की सेवा करते हैं, इसको कृत दास कहते हैं, टोटल सेवा। ऐसा नहीं सोचे कि अब परिवार के लिए कुछ करना है, इधर उधर करना है, राम दरबार से ले जाएंगे, कुछ नहीं। उनका राम सीता के अलावा कोई है ही नहीं, इसीलिए दास से भक्ति में हनुमान जी का प्रथम स्थान। इस तरह से राम का होकर के सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।